पार्थिव प्रसप्त माने जो प्रशंसा करने के योग जो कर्म है वो सुसत कहे गए। प्रशंसा करने के योग कर्म वही है कि जो शास्त्र विहित है, शास्त्र के जो प्रतिकूल है उसकी प्रशंसा न तो साधु महात्मा ही करते और न शास्त्री ऐसा करता। तो यज्ञ जो है, दान जो है, तप जो है, ये प्रशंसा करने के योग कर्म है। इसी प्रकार से तीर्थ जो है, व्रत जो है, उपवास जो है, सेवा है, ये भी सत्कर्म है। इसी प्रकार से थी समझो कि फिर भगवान की भक्ति विषय के जितने कर्म है वो तो सत है। जैसे भगवान का भजन करना, ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, नमस्कार करना, ये तो सब सत्कर्म है ही। तो जितनी जो शास्त्र विहित उत्तम क्रिया है वो सब सत है। तो बाहर की हमारी सारी क्रिया भी सत होनी चाहिए, हमारा व्यवहार भी सत होना चाहिए। उत्तम जो व्यवहार है उसको सत व्यवहार कहते हैं कि इसका व्यवहार है तो सत है, इसका व्यवहार श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कहना या सत कहना एक ही बात है, उसी को साधु व्यवहार कहते हैं, उसी को सत्य व्यवहार कहते हैं, उसी को सदाचार कहते हैं। और सदाचार जो है इससे ही सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है। प्रभागमाना आचार है प्रथमं परिकल्पति, सारे वेद शास्त्रों के बीच के मां प्रथम आचार की कल्पना की गई, क्योंकि आचार है प्रभो धर्मो, धर्म से प्रभु रचित है, धर्म का प्रभु जो अच्युत जो भगवान है एक प्रकार से की, क्योंकि धर्म के पालन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इस वास्ते समझो ये कहा गया कि धर्म का प्रभु ऐसो सत्य है, भगवान है, भगवान ऐसो सत्य है। और सारे धर्मों की उत्पत्ति आचार से होती है। आचार के दो भेद हैं कि शोचाचार और सदाचार। शोचाचार का मतलब है जल और मृत्यु का आदि से शरीर को एक प्रकार से शुद्ध बनाना, और सदाचार का मतलब है कि सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना। उस उत्तम व्यवहार के अंतर्गत ही ये बाहर की सारी उत्तम क्रिया है जो मैं आपको बता चुका, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, पूजा करना, जप करना, तप करना, ये सब चीज उसके अंतर्गत आ जाती है सदाचार के अंतर्गत। और आचरण जो हमारे सबके साथ में पवित्र होने का प्रधान उपाय यह है कि अभिमान से रहित होकर के व्यवहार करना। जब तक व्यवहार हम करते हैं हमारे साथ में अभिमान आ जाता है तो वो व्यवहार हमारा सत्य हो जाता है, क्रोध से व्यवहार असत हो जाता है, लोभ से व्यवहार असत हो जाता है, मूर्खता से व्यवहार असत हो जाता है। तो इसलिए जिसका व्यवहार सत होता है उसके मां ये काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुण भी ऐसे दूर हो जाते हैं। और हृदय से जब दुर्गुणों का एकदम अभाव हो जाता है काम क्रोध लोभ मोह का, तो फिर उसके द्वारा तो अपने आप ही सत व्यवहार होता है। असत्य का जो हेतु उसके वहां है ही नहीं तो उसका व्यवहार असत कैसे होगा, उसका व्यवहार तो सतह शुद्ध हो जाता है। मूल जो इसके इसके वहां कारण है वो निष्काम भाव है। हृदय का जो निष्काम भाव है वो सत्य भाव है, वो उत्तम भाव है, साधु भाव है, श्रेष्ठ भाव है। और निष्काम जो हृदय का भाव हो जाता है तो हमारी सारी क्रिया के वहां निष्काम भाव प्रवेश हो जाता है, तो हमारी सारी क्रिया पवित्र हो जाती है। आप किसी के साथ में व्यवहार करते हैं उसमें आप स्वार्थ का त्याग कर दीजिए, और स्वार्थ का त्याग करके और त्याग करने का जो अभिमान है उसका भी त्याग कर दीजिए, तो फिर वो आपका जो व्यवहार है वो अपने आप ही उस कोटि का हो जाएगा। इस प्रकार का जो हमारा व्यवहार है वो सत्य व्यवहार, तो हमको सत्य बोलना चाहिए, चाहे हमारे प्राण जाएं, किंतु हमको कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा वाणी का तब बतलाते हैं। एक चरण के माँ कहते हैं सत्संग प्रिय हितम है, कैसा वचन बोलना चाहिए, शत्रु हो प्रिय और हित का। एक समझो कि चरण में तीन बात बतला दी, जो मनु जी ने एक श्लोक में जो दो बात बतलाई, अय्या भगवान उसी का विस्तार करके तीन बात कही। मनु जी कहते हैं सत्यम बुरियात प्रियं बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियं अनितं न प्रियं बुरियात देशे धर्म सनातन। सत्यम बुरियात प्रियं बुरियात कि सत वचन बोलना चाहिए और प्यारा वचन बोलना चाहिए। न बुरियात सत्यम प्रियं अप्रिय हो और सत्य हो ऐसा वचन नहीं बोलना, प्यारा हो और मिथ्या हो ऐसा वचन भी नहीं बोलना, ये सनातन धर्म। तो दीदी कहो कि इसमें तो दो ही बात है, सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए, सब तो इसमें बतलाया ही नहीं। तो बोला हित शब्द जो है वो उस दोनों के अंतर्गत है जिसके सत्य और प्रिय, वास्तव में प्रिय वही है कि जो एक प्रकार से हित है। यदि मैं आपको प्यारी प्यारी बातें कहता हूँ, आपके मन सुहाती बातें कहता हूँ, किंतु वो बात आपके लिए समझो कि भावी के बीच के अनिष्ट करने वाली है, जब कब आपको ज्ञान होगा तब उस वक्त में आप कहेंगे वो प्रिय प्रिय बात कहा करता था किंतु वो हमारे अहित की थी, वो ठग था बात, तो वो बात वास्तव में आगे जाकर के उसको प्रिय कायम नहीं रही। इस वास्तव प्रिय वही है कि जो वास्तव में हमारे हित की बात है, अहित की बात हमको जो प्रिय लगती है वो अज्ञानता के कारण से लगती है, वास्तव में वो अप्रिय है, प्रिय नहीं है, आत्मा के वो विरुद्ध है। एक प्रकार से जो आत्मा का पतन करने वाली चीज है वो वास्तव में हमारे लिए प्रिय नहीं है, हम मूर्खता से उसको प्रिय मान लेते हैं। इसलिए यह समझना चाहिए उस प्रिय के अंतरीय हित भरे हुआ है, दूसरे सत्य के अंदर सत्य बोलना चाहिए। जो बात इसकी होती है वो ही वास्तव में सत्य होती है, सबसे कभी अहित होता ही नहीं, और यदि अहित होता है तो वो सत्य ही नहीं। सत्य के साथ के विषय मां बोलने के बीच के माँ जो सत्य है कहीं अप्रिय प्रतीत होती है, ये तो हो सकता है। सत्य जो वचन है वो किसी को कठोर मालूम देवे अप्रिय मालूम देवे ऐसी बात तो हो सकती है, किंतु सत्य जो होकर के हित की न होए ऐसी बात नहीं होती। इसलिए उन्हें हित शब्द अलग नहीं कह करके ये कह दिया कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। फिर को तो फिर भगवान ने यह हित शब्द क्यों दिया, खुलासा करने के लिए। बहुत से आदमी इसको समझते नहीं, ये समझते हैं कि एक प्रकार से सत होकर के भी अहित की बात होती, इसलिए भगवान ने कहा कि भी ठीक है सत भी बोलना चाहिए, प्यारा भी बोलना चाहिए, हित का वचन भी बोलना चाहिए। जब तुम ऐसा समझ लेते हो ऐसा तुम्हारा कहीं भ्रम हो जाता है कि सत और प्रिय होकर के भी उसमें हित रह जाता है तो ठीक है, तुम तीनों बात उसके वहां समझ लो, समझ लिया करो, कोई भी वाणी बोलो तो सब प्रिय हित का वचन बोला। अब ये समझना है कि सत्यवादी पुरुष को किन किन स्थानों के बीच के वहां असत शब्द होता है उसका भी थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। जो आदमी भविष्य की क्रिया बोला करता है उसमें असत्य शब्द होने की संभावना होती है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं कल प्रेस जाऊंगा, अगर बीमार पड़ गया नहीं जा सका तो असत्य के लिए गुंजाइश है, तो मैं ये प्रतिज्ञा करूं भविष्य के लिए कि मैं प्रेस कल जाऊंगा, अगर किसी काल नहीं जा सका तो मेरी बात असत्य हो गई ना, तो मुझको उस समय विचार करके बोलना चाहिए, ऐसी क्यों प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं कल जाऊंगा। अच्छा कल के लिए संकेत रखो, कल के लिए थोड़ा विचार रखो, यदि हो सका तो एकदम से जाना हो सके तो उसमें गुंजाश, नहीं भी जाना हो तो इसके लिए समझो कि हमारे वचन मिथ्या नहीं होंगे। शास्त्र की बात तो नहीं है, एक लौकिक बात सुनी जाती है, कहीं शास्त्र में भी हो तो हमको पता नहीं, किंतु हमने जितने पुस्तक देखे उनमें वो बात मिली नहीं कि जैसे समझो कि महाभारत है और भी बहुत से पुराण हैं, कई पुराण जो हम देख सके उनमें वो बात नहीं मिली। बात राजा युधिष्ठिर की है, एक समय के बीच में कोई एक ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के पास के वहां दान लेने के वास्ते आया, तो उस ब्राह्मण देवता से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम आपको कल देंगे। ये सुनकर के अर्जुन आदि जो उसके भाई हैं, एक प्रकार से उन्होंने बड़ा हर्ष मनाया। हर्ष मनाया तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन से कि भैया ये कौन सी बात है, आज कौन सा पर्व है कि जिसे इतना उत्सव तुम लोग मना रहे हो। बोले प्रभु आज क्या कहें, बड़ा उत्सव, बहुत ही अच्छा पर्व है। बोले क्या, कि आपने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं कल आपको दान दूंगा, तो आप सत्यवादी महात्मा है, आपके वचन असत तो होंगे नहीं, तो कल तक तो आपके दर्शन हम लोगों को होंगे ही। इसने कहा वो मैं ऐसा कह दिया, तो जो अच्छे जो पुरुष होते हैं उनको इस प्रकार से सचेत कराया जाता है। भाव ये अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु आप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की भावी की प्रतिज्ञा करके ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए, किंतु ऐसा इन शब्दों में कह रहे तो भाई को उपदेश देना हुआ, ऐसा एक प्रकार से संकेत करना सुंदर संकेत है कि आपके मुख से ये वचन निकले, इससे हमको बहुत खुशी हुई कि कल तक तो आपके दर्शन होंगे ही। क्यों कि जब आप तो सत्यवादी हैं, आपके वचन तो मिथ्या हो नहीं सकते। तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो अभिप्राय कहने का यह है कि हम लोगों को ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसमें भविष्य की क्रिया न आवे, तो उसके बीच के माँ फिर गुंजाश नहीं रहेगी मिथ्या वचन बोलने की। और ऐसा अपने हृदय में संकल्प भी नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प भी नहीं करना चाहिए। यदि हम भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प कर लेंगे और उसको काम में नहीं ला सकेंगे तो हमारे हृदय का जो संकल्प है वो असत्य हो जाएगा, और हृदय का संकल्प असत्य होने से थी एक तो ये हानि होगी कि हमको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हमने कह दिया हृदय का मैं संकल्प कर लिया कि हम निश्चय कलकत्ते जाएंगे और किसी कारण से हम मर गए, तो मरने के बाद में फिर हमारा जन्म कलकत्ते में होगा, क्योंकि हमारा जो दृढ़ संकल्प था कि उसकी पूर्ति हो ही नहीं, तो उस संकल्प की पूर्ति करने के लिए हमारे को फिर जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा बार बार संकल्प हमारा मिथ्या होगा तो हमारे हृदय के बीच के माँ जो कोई भी हम संकल्प कर ले वो सत्य हो सकता है, वो सत्य संकल्प होने के बीच के माँ आपत्ति आएगी, हमारा संकल्प सत्य नहीं होगा। जैसे कोई आदमी बार बार झूठ बोलता है तो उसकी वाणी कभी सत्य नहीं हो सकती, जो ये बात बतलाई गई है कि सत्य प्रतिष्ठा एवं क्रिया फला से सत्य की प्रतिष्ठा होने पर उसके वचन की क्रिया फल वाली हो जाती है। सत्यवादी पुरुष जो कुछ वाणी से कह देता है उसका वचन सत्य हो जाता है। जैसे पूर्व के जमाने के बीच के माँ समझो सत्यवादी तपस्वी पुरुष किसी को साप देते थे, किसी को वरदान देते थे, आशीर्वाद देते थे, वो सत्य हो जाया करता था। बात ये थी कि वे सत्यवादी थे। तो जिस प्रकार से जो आदमी आपने सत्य नहीं बोलता है उसकी सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती, और सत्य की जब प्रतिष्ठा नहीं होती तो उसकी वाणी सत्य नहीं होती। इसी प्रकार से जो आदमी संकल्प विकल्प करता रहता है, जिसके संकल्प का कोई आदर नहीं है, जो इस प्रकार से मिथ्या संकल्प करता रहता है, तो उसका संकल्प भी अपने सत्य नहीं होता। इसलिए हमको अपना संकल्प सत्य करना चाहिए, माने संकल्प का फेरबदल नहीं करना चाहिए। तो वाणी की सत्यता और यह अंतकरण की सत्यता, वाणी की जो सत्यता है उससे श्रेष्ठ हृदय की सत्यता है, माने समझो कि मन के संकल्प की सत्यता उससे श्रेष्ठ है। वाणी की जो सत्यता है और व्यवहार की जो सत्यता है ये बाहर की सत्यता है, और हृदय के भावों की जो सत्यता है वो भीतर की सत्यता है, वो उससे ज्यादा दामी चीज। और उससे भी ज्यादा दामी चीज है जो हमारी बुद्धि का जो निश्चय है कि परमात्मा है और वो सत्य है और नित्य है, इस प्रकार का जो हमारे हृदय का जो निश्चय है, ये निश्चय हमारा जितना अधिक हो जाता है उतना ही हम भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं, उतना ही हम भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हृदय के बीच के माँ इसकी विशेषता रहनी चाहिए कि भगवान है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। और भगवान है तो एक प्रकार से हमको कौन बात का भय, भगवान है तो फिर हमारे को कौन बात की चिंता, भगवान है और मिलते हैं तो हम वंचित क्यों हैं, भगवान है तो और फिर हमको करना ही क्या है, वो काम तो हमको निश्चय कर ही लेना है। फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूँ कि वाणी की असत्ता गुंजास और कहाँ है। तो मनुष्य के वहां जब क्रोध आ जाता है तो क्रोध के वशीभूत होकर करके और वे क्या इसे बक देता है, तो सत्यवादी जो पुरुष है उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो सत्यवादी पुरुष है उसको तो क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय का जो भाव सत्य हो जाता है तो उसके जिसके माँ क्रोध तो असत है, एक प्रकार से असत की जड़ है। इस वास्ते ये जितने दुर्गुण है वो समझो कि असत भाव है, सदभावे साधु भावे से, साधु जो भाव उसमें सब शब्द का प्रयोग किया जाता है, असाधु भाव में नहीं। तो साधु भाव श्रेष्ठ भाव है, श्रेष्ठ भाव क्या है कि जिसको मानसिक तब बतलाया गया है वो सब श्रेष्ठ भाव है। तो हृदय के जो श्रेष्ठ भाव है, मन प्रसाद सोमित्व मौन मात्र विग्रह भाव समझे तबो मानस मुच्यते। भगवान ने गीता की इस सत्रहवें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया, मन प्रसाद है, मन की प्रसन्नता या प्रसन्नता समझो कि भोगों को लेकर के नहीं, मन शुद्ध होने से जो प्रसन्नता होती है उसका नाम प्रसाद है। मन प्रसाद है सोम्य, तुम जो सोम्य भाव है ये साधु भाव है। मौनम, मन का जो मौन है एक प्रकार से मन का, मौन का दो रूप है, एक मननशीलता और एक मन का चुप हो जाना। जैसे वाणी का चुप होना, वाणी का चुप होना जैसे मौन है, ऐसे हृदय का चुप होना मौन है। तो मन प्रसाद सोमत्तुं मौनम आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह मन अंतःकरण का निग्रह, अंतःकरण का जो निग्रह है ये सत भाव है। मन प्रसाद सुन तुम मौन मात निकले भाव संशुद्धि, भाव की जो पवित्रता है, भाव की जो शुद्धता है ये सत्भाव। इस प्रकार का जब सत्भाव हो जाता है, माने हृदय जब पवित्र हो जाता है तो उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि कोई भी समझो कि असत पदार्थ नहीं रहते, इनके रहते हुए अंतकरण की समक प्रकार से शुद्धि नहीं बतलाई जा सकती। तो इसलिए जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो ये सब दोष उसमें रह ही नहीं सकते। जब हृदय में ही नहीं है तो हमारी वाणी में कहाँ से आवाएंगे, हमारी क्रिया में कहाँ से आवाएंगे, जो चीज हृदय में ही नहीं है वो बाहर में कहाँ से आवेगी। इस वास्ते ये कहा जाता है कि साधक को साधनावस्था के बीच की माँ समझो कि जब उसका हृदय तो शुद्ध नहीं है किंतु एक प्रकार से वो पहले अपने बाहर की शुद्धि के लिए चेष्टा करता है, तो बाहर की शुद्धि के बीच के वहाँ आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि और वाणी की शुद्धि। तो वाणी की शुद्धि क्या है कि जो सत्य वाणी है वो शुद्ध है, तो इस प्रकार से सत्य वचन बोलना चाहिए। तो सत्य वचन बोलने के साथ साथ के बीच के वहाँ सतवचन बोलने के समय के बीच के मां उसको क्रोध नहीं करना चाहिए और अधिक नहीं बोलना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए और किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। क्यों कि निंदा करता है तो आवेश मार करके अधिक कर जाता है, इसी प्रकार से स्तुति करता है तो स्तुति भी अधिक कर जाता है। और सत्य वो है कि जो बात जैसी सुनी गई हो, देखी हुई हो, समझी हुई हो, उतनी कहना, न तो अधिक कहना और न कम कहना। तो कम कहता है अपनी एक प्रकार से, जो प्रशंसा कहता करता है तो अधिक कर जाता है, और अपनी निंदा करता है, अपना दोष बतलाता है तो कम बतलाता है। तो कम बतलाता बतलाना भी असत्य है, अधिक बतलाना भी असत्य है। तो सत्य तो वो ये है कि जो बात जैसी सुनी जैसी ही कही जाओ। यदि कहो कि कोई आदमी आकर के समझो कि ऐसी बात हमारे से पूछे कि जो उसको कहने के कहीं उचित नहीं है, तो उस वक्त में आपको मौन हो जाना चाहिए। मौन जो है ये भी सत्क्रिया है। तो समय में मौन होना चाहिए कि जो अन्यायुक्त कोई बात आपसे पूछे या अनधिकार की बात आपको पूछे, कोई चोर पूछे कि आपका धन कहाँ है, आप कहाँ सोते हैं, आपका कैसा इंतजाम है, तो हम थोड़ा उसको बता दें कि हमारा रुपया वहाँ पड़ा है, हमारा गहना लूट यहाँ रखते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। यदि कोई हम व्यापार करते हैं और व्यापार का कोई भेद पूछे कि भी इस प्रकार से तुमने जो ली है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कोई बात आपको पूछे कि आपके साधन की स्थिति कहाँ तक हो गई, कोई पूछे किसी आदमी को कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो भी गई हो, पूछे कि तुम्हारे को भगवान मिले कि नहीं, तो ये कोई बात नहीं कि उसको बतलाना पड़ेगी हाँ या ना। वो कह सकता है कि भाई इस विषय में व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं नहीं बतलाऊंगा, तो उसके वास्ते कोई बात नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं गीता के बीच के माँ कि अर्जुन मैं तुम्हारे को ये परम गोपनीय बात कहता हूँ, और ये जो मेरी बात है तो तुम अपात्र के लिए नहीं कहना। सर्व कुछ तमंग हुए तृणों में परमंग बचाई में दृढ़ तत्व बख्शामी तेजी तम, सर्व कुछ तम जो बात है वे मैं तुम्हारे को कहता हूँ, फिर कहता हूँ, पहला कह चुका था फिर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्यारा है और ये एक प्रकार से थी तेरे की बात है। सिर्फ कुछ तमंग हुई शरणों में परम स्टोची में दृढ़ती तत्व बख्शामी ते ही तम। और ये कह करके फिर उपदेश दिया कि एक प्रकार से मन मना हो मद भक्तो मध्या जी मांग नमस्कार मामे सत्संग के प्रति जाने प्रयोग में सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कर्म शरण हृदय हम स्वाश्र पापे जो मोक्ष स्वामी मास्टर से। इस प्रकार से भगवान ने गुप्त रहस्य की बात कही और कहकर के फिर मना कर दिया। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नेता सुखन न मांग सुवे थी इदम ते मन, ये जो वचन है अतपस्काय न वाचन कदाचन, जो तपहीन है उस पुरुष के प्रति कभी नहीं कहना चाहिए और जो मेरा भक्त नहीं उसके लिए कभी नहीं कहना चाहिए और जो मेरे गुणों में दोष दृष्टि करता उसको कभी नहीं कहना चाहिए और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो भगवान मना करते और ये गोपनीय बात है। यदि एक प्रकार से सभी बात सबके कहने के लिए बात हो तो फिर गोपनीय चीज क्या रही। इसलिए एक प्रकार से जो बात गुप्त है उसे को न कहना जो है वो एक प्रकार से उत्तम बात है। इस प्रकार से हमारे बाहर की जो क्रिया है वो भी सत्य होनी चाहिए। हमारा सबके साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दूसरे पर ऐसा प्रभाव पड़े वो खुश हो जाए, वो चाहे खुद न कर सके किंतु हमारे व्यवहार को देख करके खुश हो जावे, ऐसा हमारा बाहर का व्यवहार होना चाहिए। और वो बाहर का व्यवहार उत्तम होता है स्वार्थ और अभिमान के त्यागने से। स्वार्थ को त्याग करके और वो भी स्वार्थ का त्याग भी किसी हेतु को लेकर के हुए, वो वास्तव के वहां स्वार्थ का त्याग नहीं। जब मैं मान बढ़ाई के लिए स्वार्थ करता हूँ या मैं परलोक के लिए स्वार्थ का त्याग करता हूँ, स्वर्गादि के लिए स्वार्थ का त्याग करता हूँ, तो वो मेरा स्वार्थ का त्याग निष्काम नहीं है। स्वार्थ का त्याग होते हुए भी उसके भीतर में मेरे कामना है, तो इस वास्ते हमारा जो स्वार्थ का त्याग निष्काम होना चाहिए, और वो निष्काम जो भाव है वो भी अहंकार रहित होना चाहिए। जो मैं एक निष्काम कर्म करता हूँ और फिर मेरे दिल में ये अभिमान है कि मैं निष्काम ही हूँ, तो वो निष्काम प्रेम वो कलंक है। इसलिए एक प्रकार से अहंकार के त्यागने से और स्वार्थ के त्यागने से और समझो कामना के त्यागने से जो व्यवहार होता है वो एक प्रकार से समझो उच्च कोटि का सत व्यवहार होता है। उसी का नाम सदाचार। इस मापक के भाव से होने वाले जितने जो आचरण है वे तो सब उत्तम से उत्तम कोटि के होते हैं। तो ये जो एक बात आपको बताई, बाहर की पवित्रता को, तो बाहर की शुद्धता को, तो बाहर की सतता को, सत्य है वही शुद्ध है, शुद्ध है वही पवित्र। कभी अशुद्ध जो वस्तु है वो सत नहीं होती। परमात्मा शुद्ध है एक प्रकार से और सम है, तो सम जो है सत जो है और अपना पवित्र है एक प्रकार से थी, वो परमात्मा का स्वरूप है। ये तेज सर्गो ऐसा स्वामी शीतंग मन निर्दोष समंग ब्रह्म तस्मात ब्रह्मी के सीता। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया जिनकी जिनका मन समता में स्थित है, क्योंकि ब्रह्म जो सो सम है और ब्रह्म सो निर्दोष है, शुद्ध है, सम है और शुद्ध है। इसलिए जिसे उनकी समता में स्थित है उसकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है, जिसे उनका अंतःकरण शुद्ध है इस प्रकार से उसका उत्तम भाव है, साधु भाव है। तो हृदय का भाव ही हमारा साधु भाव होना चाहिए, श्रेष्ठ भाव होना चाहिए, उत्तम भाव होना चाहिए। और उत्तम जो है श्रेष्ठ जो है वो सत्य है, उत्तम और श्रेष्ठ है वो शुद्ध है, शुद्ध जो है सम जो है और सत्य जो है वो एक प्रकार से समझो कि साधु भाव। और साधु भाव होने से हमारी क्रिया भी समझो कि उत्तम ही होगी। तो भीतर का जो भाव है समझो कि साधु भाव है, उसको सत भाव कहते हैं। इसी प्रकार से थी उसके अनुसार जो हमारी क्रिया है वो सत क्रिया है। इस प्रकार से हमारी क्रिया भी ऐसी होनी चाहिए। वो तीन बात बतराई, हमारी वाणी की क्रिया समझो कि हमारा भाषण भी सत्य होना चाहिए, और हमारे इंद्रियों की जो क्रिया हमारा बर्ताव भी सत्य होना चाहिए, और हमारा भोजन भी सत्य होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे हृदय के जो भाव हैं वे भी ऐसा सत्य होने चाहिए। कहते हैं कि यज्ञ तपसी दानी से स्थिति सदिति चोटते, क्या श्लोक है, कर्म से तदितियम सदित्यावे। तो ये कहा जाता है कि यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप से थी और भी जितने जो उत्तम कर्म है किसी जाति के वो सब समस्त कर्म ले लेनी थी। चेता नपि तु कर्मानी संगं तक्त्वा फलानी चो, भगवान कहते हैं ये यज्ञ दान तप भी और भी जो जितने शास्त्र भी धर्म है उनमें फल और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ये भगवान कहते हैं मेरा सिद्धांत है, लिखा नहीं जाके वहाँ भगवान है तो कह रहे हैं। तो यज्ञ तप से दाने सदृति चोटते, यज्ञ दान और तप की मान स्थिति जो है यानी जो निष्ठा है, स्थिति मतलब निष्ठा, यज्ञ और दान और तप के मान जो हमारी निष्ठा है, इसके करने का जो हमारा सिद्धांत है, हमारा जो इसके विषय में दृढ़ जो निश्चय है कि यज्ञ दान और तप है बहुत उत्तम चीज है, ये जो निष्ठा है ये भी सत्य निष्ठा है, यह स्थिति भी सत्य है। और परमात्मा के अर्थ जो कर्म है वो सत्य ऐसा है तो कहा गया है, वो परम सत्य है। जो परमात्मा के लिए कर्म किया जाता है भगवत अर्थ जो कर्म है, तदर्थ में भी कर्मवाणी कुरंग सिद्धि महापुरुष, भगवान कहते हैं कि तदर्थ जो कर्म है करने वाला जो पुरुष है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। तदर्थ जो कर्म है भगवत अर्थ जो कर्म है, क्योंकि भगवान सत्य है उसके लिए उसके लिए किया गया कर्म वो भी सत्य है। इस वास्ते हमारे जो कर्म जो है तो भगवत अर्थ होने चाहिए, हमारे जो कर्म है तो स्वरूप से भी सात्विक होने चाहिए और भाव से भी सात्विक होने चाहिए।
रामचंद्र की और मुग्ध वंश की।